ओम शांति। यज्ञ माता जगदम्बा सरस्वती, आज हम देखेंगे कि उनका इतिहास, कि जो संपूर्ण विश्व की प्रथम महारानी है, क्वीन है, जिनका स्वर्णिम इतिहास, कि जिनका पहला जन्म, उस समय भी उनका नाम राधे था और अंतिम जन्म में भी उनको लौकिक नाम भी राधे था, तो अलौकिक नाम भी उनको मिला था ओम राधे। तो ऐसी हमारी मीठी मम्मा के हम 5 दिन से सुनते आ रहे हैं कि मम्मा के गुण क्या थे, विशेषता क्या थी। तो ओम राधे का जन्म, इस विलक्षण कन्या का जन्म हुआ 1919 में अमृतसर में। ऐसा कन्या रत्न जिन्होंने इस भारत भूमि में फिर से जन्म लिया, अपने पिता के कार्य में मदद करने हेतु। उनकी माता का नाम रोचा माता था। उनकी एक बड़ी बहन भी थी जिनकी शादी हो चुकी थी, और एक छोटी बहन भी थी। तो मम्मा एक ऐसी पर्सनालिटी थी, बचपन से ही सभी एक आकर्षण मूर्त थी। जब भी वो स्कूल में भी जाती थी तो उनके जो गुण थे, गीत गाना, डांस करना, उनका जो ड्रेस था, उस पर सब प्रभावित होते थे। मम्मा के बारे में वर्णन किया है कि उनके वो लंबे बाल और सब पर सबको मोहित करने वाली उनकी पर्सनैलिटी थी। जब 17 साल की आयु में वो यज्ञ में आई, उस समय बताया गया कि उनकी माताजी और मौसी दोनों के भी पति ने शरीर छोड़ा था, तो बहुत दुखी होने के कारण बहुत रोती थी। तो वो कहीं सत्संग के लिए जाती थी। तो एक दिन जसोदा जी, जो बाबा की लौकिक में युगल, तो उन्होंने खिड़की से देखा कि ये रोज कहाँ जाती है। तो उनको बोला कि आप भी, हमारे यहाँ भी सत्संग है, आप भी यहाँ भी आ सकते हो। तो वो दोनों उस दिन वहाँ बाबा के यहाँ रुक गए और उन्होंने वहाँ पर ओम ध्वनि किया। और उस सत्संग से वो जब घर लौटी तो ओम राधे ने देखा कि ये रोज के दुखी चेहरे, रोने वाले चेहरे, आज इतने खिलखिला कैसे गए, कैसे इनमें खुशी आ गई। तो उन्होंने पूछा अपनी माँ को, आज आपको क्या मिला? तो उन्होंने कहा कि वहां गीता के ऊपर सत्संग होता है। तो उनकी माँ ने उनको भी आग्रह किया कि आप भी हमारे साथ चलो, आप भी स्कूल में गीता पढ़ती हो। तो ओम राधे का वो पहला दिन अपने मम्मी और मासी के साथ वो ओम मंडली में आई थी। तब पहली बार जब उन्होंने बाबा को देखा तो उनको लगा कि यही मेरे पिता है। उस अलौकिक पिता से उनको साक्षात्कार हुआ। फिर बाबा को भी जब मम्मा को देखा तो उनको भी लगा ये हमारी बच्ची है। तो ओम राधे सत्संग में रोज आने लगी और मम्मा जो ओम की ध्वनि करती थी वो सबको अच्छी लगती थी। फिर मम्मा ने एक गीत लिखा कि मैंने ओम मंडली में आकर के क्या पाया। तो वो बाबा को बहुत अच्छा लगा। फिर बाबा रोज एक गीत ओम राधे को लिख के देते थे और मम्मा उस गीत को सुनाती थी। तो ऐसे ही सत्संग चल रहा था और मम्मा सबकी लाडली बनती जा रही थी। तो बाबा कश्मीर जा रहे थे अपने परिवार के साथ। तो बाबा कश्मीर में गए तो वहां से पत्र लिखते थे, जो भी वहां सत्संग में आने वाली माताएं कन्याएं थी तो उसमें मम्मा को भी बाबा के पत्र आते थे, तो वे सब वहां पर पढ़ करके सुनाते थे। तो ऐसे धीरे धीरे, हालांकि मम्मा के पहले भी सत्संग में आने वाले सीनियर बड़ी बहनें थी, माताएं थी, लेकिन मम्मा में वो गुण थे, वो क्वालिटीज थी। एक बार जो बाबा ने बात कही उसको तुरंत धारण कर लेती थी। तो इस विशेषता के कारण सबका ध्यान जो था मम्मा पर था। तो निर्मल शांता दादी बताती है कि उन बाबा ने उनको मम्मा के साथ रखा था। तो निर्मल शांता दादी कहती कि मैंने मम्मा कहना शुरू किया। बाबा ने कहा था कि आप इनके साथ रहते हो ना, ये आपकी पालना करते हैं ना, तो ये आपकी मम्मा है। तो दादी ने मम्मा कहना शुरू किया तो और भी सभी ने मम्मा कहना शुरू किया। बाबा ने भी कहा मम्मा, कभी बेटी कहते थे, कभी मम्मा कहते थे, तो कभी मम्मा बेटी कहते थे। तो जैसे उनको मम्मा का टाइटल मिला, मम्मा तो पहले थी राधे, फिर बनी सरस्वती, फिर बनी यज्ञ माता जगदम्बा। तो यह उनकी ट्रैवलिंग जो है वो कैसे रही। तो मम्मा का एक गुण और भी था, निश्चय बुद्धि। बाबा ने जो कहा उसको एक्सेप्ट करना, हां जी करना। तो फिर वो कौन सी भी बात हो, ज्ञान की बात हो, जैसे कल भी हमने सुना था कि आत्मा का रूप बाबा ने पहले बताया कि अंडे मिसल है, फिर अंगुष्ठे मिसल, फिर बिंदु रूप, हाँ स्टार मिसल। तो ये बाबा के नॉलेज समय प्रति समय चेंज होती गई, लेकिन बाकी लोगों को थोड़ा प्रश्न उठता था, वो बाबा को पूछ भी लेते थे कि बाबा ऐसे कैसे, आपने तो पहले ये कहा था। लेकिन मम्मा ने कभी आर्ग्यूमेंट नहीं की, बाबा ने कहा मान लिया। तो वो भी एग्जाम्पल है कि जो लच्छू दादी को आंगन में अंडा मिला था और बाबा ने कहा कि मम्मा को बुला और बोला कि मुख खोलो, तो मम्मा ने तुरंत मुख खोला और बाबा ने भी एक्ट की कि जैसे बाबा वो अंडा मुख में डाल रहे हैं, डाला नहीं, लेकिन इतना विश्वास बाबा के ऊपर। और बाबा का भी मम्मा के प्रति बहुत ज्यादा रिगार्ड और रिस्पेक्ट था। तो बाबा अपने कर्मों से बच्चों को भी सिखाते थे, भले मम्मा उम्र से छोटी थी। एक दिन जगदीश भाई सुनाते हैं कि मम्मा कहीं बाहर गए हुए थे और मम्मा बारिश के दिन थे, तो मम्मा मधुबन में आने वाली थी और बूंदाबांदी हो रही थी, बारिश हो ही रही थी। तो मम्मा टैक्सी से मधुबन के आंगन में आने वाली थी, तो बाबा ने कहा देखो कौन आ रहा है, देखो कौन आ रहा है, जगदम्बा आ रही है ना, तो हम उनको बारिश में उतारेंगे, तो ऊपर कोई छत होनी चाहिए, गाड़ी से उतरे तो मम्मा के ऊपर बारिश के बूंदे गिरे नहीं। लेकिन जो उस डिपार्टमेंट का निमित्त भाई था, उन्होंने बाबा को साफ मना कर दिया। बाबा ने कहा हो सकता है बच्चे, तो उसने कहा बाबा ये बात हो ही नहीं सकती, हम क्यों प्रयास करें, एक रात में कैसे हो सकती है छत तैयार। तो उस समय जगदीश भाई वहां खड़े थे, उन्होंने कहा कि स्वयं कह कौन रहा है और हम उनकी बात को क्यों टाल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं करूंगा। फिर उन्होंने अपनी तैयारियां शुरू कर दी, बाबा भी वहां से चले गए और फिर उन्होंने उस छत बनाने का काम शुरू किया। फिर वो जो निमित्त भाई थे, उन्होंने देखा कि अरे मेरी आरी खराब हो रही है, ये लोग तो मेरा जो इंस्ट्रूमेंट है वो खराब कर देंगे, इससे अच्छा मैं ही उनको मदद कर दूं। और रातों रात बांस का और वो सब मिला के उन्होंने वो छत तैयार की। फिर भाई जी बताते हैं कि एक बार जंगल में वो गए थे, बाबा भी साथ में थे, मम्मा भी थी। फिर बाबा ने कहा आप क्या करो, एक लकड़ियां इकट्ठी करो, जैसे गुरुकुल में शिष्य क्या करते थे, पढ़ाई के बाद लकड़ियां इकट्ठी करके लाते थे। उस समय भी यज्ञ में इतने सारे साधन नहीं थे, सोलार आदि, तो लकड़ियां इकट्ठी करते थे, तो उनको लगा हमें उधर लेके जाना होगा मधुबन में, तो उन्होंने इकट्ठी की लकड़ियां। फिर बाबा ने कहा आप तो भक्ति करते थे ना, जगदीश भाई से कहा, तो आपको जगदम्बा की आरती आती होंगी। तो उन्होंने कहा बाबा मैं तो भूल गया, आपने कहा था कि यह सब भूलना है, तो भी करता हूँ याद। और फिर बाबा ने कहा कि वो लकड़ियां जलाओ, मम्मा के सामने रखी, और बाबा के डायरेक्शन अनुसार जगदीश भाई जी ने मम्मा की आरती भी गाई। तो देखो मम्मा के प्रति इतना रिगार्ड प्यार, और मम्मा भी मुस्कुराती रही, मम्मा ने मना भी नहीं किया, क्योंकि पता था प्लानिंग तो सब बाबा का है। और बाबा ऐसे पीछे खड़े हो गए साक्षी होके कि जैसे ये सब यही कर रहे हैं। तो ऐसी सबके दिलों में पर राज करने वाली जगदम्बा सरस्वती, जिनका अनुभव रमेश भाई जी भी सुनाते हैं कि अंतिम समय जब मम्मा को बताना था कि आपको इतनी बड़ी बीमारी हुई है, कैंसर हुआ है, तो उनको दिल अंदर खा रही थी कि मैं कैसे सुनाऊं। डॉक्टर ने जो बात सुनाई वो तुरंत सेंटर पर आए और अपनी शील इंद्रा दादी जो थी उनको उन्होंने कहा कि आप अभी के अभी बाबा के पास जाओ और उनको कहो कि मुझे आपसे मुलाकात करनी। दादी जी वतन में गई और बाबा आए दादी के तन में और रमेश भाई से मुलाकात की। तो भाई जी ने कहा कि ये बात अभी मैं कैसे सुनाऊं। बाबा ने कहा ये तो आपको सुनानी है, मम्मा को भी सुनानी है और बाबा को भी सुनानी है, लेकिन ये बात औरों को पता न पड़े। तो उनके सामने बहुत बड़ा प्रश्न था, लेकिन वे कहते हैं कि जैसे ही मैंने ये बात मम्मा के सामने रखी तो मम्मा बिल्कुल शांतचित थे और उन्होंने मृत्यु का ये जो आह्वान था उसको भी कैसे शांति से किया। तो इतनी बड़ी परिस्थिति आई, उन्होंने कहा हम अभय तो बन जाते हैं, लेकिन जैसे ही मृत्यु की बात सामने आती है, मृत्यु का समाचार, वो भी खुद के, तब मनुष्य तो हलचल में आ जाते हैं, लेकिन वे तो खुद सबको जीवन का दान देने वाली जगदम्बा, तो वो बिल्कुल ही कैसे शांत चित रही, अपने चेहरे पर बिल्कुल उन्होंने कुछ दिखाई नहीं दी रेखाएं कि अभी तो इतनी बीमारी फैल चुकी है और अभी वो अंतिम क्षण चल रहे हैं। फिर भ्राता ब्रिजमोहन जी भी सुनाते हैं कि उन अंतिम दिनों में जब लास्ट मीटिंग उनकी यहाँ पर हुई, उन्होंने कहा मैं नक्की का चक्कर लगा के आ ही रहा था और सामने से मम्मा आ रही थी, तो उन्होंने कहा कि चलो आज हम अनादरा तक जाएंगे। तो मम्मा कैसे सबकी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली सरल चित, छोटों के साथ भी उन्होंने कहा कि मुझे हमेशा मम्मा ने ब्रिजमोहन जी कह के बुलाया, मना बड़ों को के साथ भी उनका कैसा व्यवहार था, उनकी लौकिक माताजी ने भी उनको क्या कहा, मम्मा कहा, और छोटे भी, तो छोटों ने भी उनको जैसे कि अपनी माँ स्वीकार कर लिया था। वे कहते हैं कि जैसे मुझे लगता था कि मेरी लौकिक माँ भी अगर मम्मा होती तो अलौकिक पालना में तो मम्मा थी नंबर वन, लेकिन लौकिक पालना भी, जैसे कि कोई आता है तो उसको तबीयत हालचाल आदि पूछना और उसकी खातिरी करना, ये मम्मा की विशेषता थी। तो ऐसे इतिहास रचने वाले, स्वर्णिम इतिहास कि जो आदि देवी सतयुग की पहली महारानी, पहली क्वीन से लेकर के अंतिम जन्म, अंतिम श्वास तक उनका वो महारानी रूप दिखाई दिया। तो ऐसी थी हमारी मीठी मम्मा। उन्होंने मधुबन में 24 जून 1965 में अपना स्थूल शरीर छोड़ करके अव्यक्त वतनवासी बन गए। अच्छा, ओम शांति।